हरे कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए तो अपने सांग पांगास्त्र पार्षदों के साथ आए थे। सांग का मतलब, ये सांग शब्द हिंदी में आता है, सांग शब्द का अर्थ है स अंग, अपने अंग, उप अंग, अंग का मतलब है अपना अपना शरीर या अपना परिचय, अपना स्वरूप। प्रॉपर कृपा, डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? यू डू? ओके ओके, वेरी गुड। सो कोई, डज एनीबॉडी नीड इंग्लिश ट्रांसलेशन? अर्चना, ओके, यू आर हैविंग ट्रांसलेशन। रूपल, योर मदर इज ट्रांसलेटिंग? ओके। सांग उप अंग मतलब अपना अंग, अपने इससे बाद में जो अंग है वो है उप अंग, कनिष्ठ अंग। अस्त्र और पार्षदों के साथ आए थे। तो यहां अस्त्र का एक विशेषता ये है कि ये एक बहुत ही अजीब अस्त्र है, अद्भुत अस्त्र है। अस्त्र से क्या किया जाता है? अस्त्र से मारा जाता है, काटा जाता है, नाश किया जाता है, जिसके द्वारा भगवान असुरों को संहार करते हैं। जैसे नारायण के रूप में भगवान चक्र और गदा, ये है उनका अस्त्र। श्री रामचंद्र के रूप में धनुष बाण, परशुराम के रूप में कुठार। ऐसे कभी कभी भगवान जब आठ हाथ लेके आते हैं तब उन आठों हाथों में कृपाण रहता है। और ऐसे भगवान का अस्त्र लेके भगवान आते हैं। बल्कि इस युग में, कली युग में भगवान जब आए हैं, भगवान एक अद्भुत अस्त्र लेके आए हैं। यह अस्त्र क्या है? यह अस्त्र भी तीन प्रकार का है। अपना सुंदरता, भगवान असुरों को संहार करने के लिए अस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो भगवान का सुंदरता एक अस्त्र है। ये देखकर जो भी भगवान को देखता था उसका आसुरिक प्रवृत्ति का विनाश हो जाता था। और एक अस्त्र है हरिनाम। ये नाम के द्वारा भगवान असुरों को, आसुरिक वृत्ति को संहार किए हैं। और एक है प्रेम। नाम और प्रेम में वैसे कोई अंतर नहीं है, क्योंकि नाम के माध्यम ही प्रेम का प्राप्ति होता है, नाम से ही प्रेम का प्रकाश होता है। तो ये भगवान का है अस्त्र और पार्षद। ऐसे सांग पांगास्त्र पार्षदों को लेकर भगवान आकर जगई संकीर्तन प्राय, भगवान एक विशेष यज्ञ का प्रवर्तन किए हैं। वो कौन सी यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ। ऐसे यज्ञ किया कैसे होता है? ये जो अग्निहोत्र, अग्निष्टम, ये सारे जो यज्ञ हैं, वो यज्ञ में आग से यज्ञ होता है। ये आग में आहुति दिया जाता है और हवि जो यज्ञ में अर्पण किया गया, जिसके कारण इसे हवन कहा जाता है, यज्ञ को हवन रूप यज्ञ, उसमें आहुति दिया जाता है। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मनाहुतम। तो ये है यज्ञ का साधारण साधारण स्थिति, बल्कि ये जो यज्ञ है ये है संकीर्तन यज्ञ। ये संकीर्तन यज्ञ के माध्यम कलि युग में भगवान नाम के माध्यम कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। और उनका ये जो है आविर्भाव ये भी हुआ है पंच तत्व के रूप में, पंच तत्तात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याखं नमामि भक्त शक्तिकम। तो ये जो पंच तत्व के रूप में भगवान का जो आविर्भाव हुआ है, अकेला भगवान नहीं है, भगवान पंच तत्व के रूप में आए हैं। पंच तत्व पंच तत्तात्मक कृष्णं कृष्ण ये पंच तत्व के रूप में आए हैं। I got a backache today. तो उच्च कर देखते पंचतत्तात्मकं कृष्णं भक्त रूप भक्तों के रूप में भगवान आए चैतन्य महाप्रभु। स्वरूपकम भक्त स्वरूप, भक्त स्वरूप का मतलब है भक्त स्वरूप है नित्यानंद प्रभु। भक्त अवतार महाविष्णु जगत कर्ता मायाया जसृजत तथा अद्वैताचार्य महाविष्णु आए हैं अद्वैताचार्य के रूप में। भक्त शक्ति राधा रानी भक्त शक्ति के रूप में आए हैं, वो है गदाधर पंडित। और भक्त आखंग स्वयं भक्त, वो भक्त कौन है, वो भक्त है शिवाषदि गौर भक्त वृंद नारद मुनि आदि भक्तगण। एक्टिवली हो
सो मच अरेंजमेंट फॉर कम्फर्ट्स सॉरी इट्स ओके।
तो वैसे पंच तत्व के रूप में आए हैं। आप लोग कौन कौन मायापुर गए हैं, बहुत अच्छा। तो मायापुर में भगवान श्री पंच तत्व के रूप में आए हैं, प्रकट हुए हैं। और कहाँ प्रकट हुए हैं, मायापुर में। मायापुर का क्या है, गोलोक वृंदावन से अभिन्न है। वृंदावन गोलोक, वृंदावन गोलोक नवद्वीप। वृंदावन का स्वरूप कैसा है, सहस्र पत्र कमलं गोकुलाख्य महत पदम। सहस्र पत्र कमल, हजारों पत्ते वाली एक कमल जैसी है। और उसके बीच में जो एकदम कर्णिकार जो है कोरक पद्म का कमल का, वो कोरक है वृंदावन। और वैसे ही ये कोरक है मायापुर। और उसके चारों ओर आठ पत्ते हैं, वो आठ पत्ते है आठ द्वीप, नौ द्वीप। नवद्वीप का भी दो अर्थ हो सकता है, एक है नौ द्वीप और एक अर्थ है नवद्वीप नया द्वीप। वृंदावन का ही नया प्रकाश हुआ है। इसको तैयार राधा रानी किए थी, की थी। राधा रानी ने ऐसी एक जगह बनाया जहां उन्होंने स्वयं कृष्ण के साथ विराज करने का इच्छा किया। तो है नवद्वीप, और वहां राधा रानी और श्री कृष्ण एक होकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, इन सब के बारे में आप सब जानते हैं। और महाप्रभु के सबसे अंतरंग पार्षद में से कौन आते हैं? सबसे निकट पार्षद में से आते हैं छह गोस्वामी, षट गोस्वामी, श्री रूप, श्री सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्री रूप रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रीजीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, और जीव, हाँ, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट रघुनाथ दास गोस्वामी, ये है। एच हय गोसाई हय मुईतार दास, ये छह गोस्वामी है। इनमें से प्रधान है श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी थे वहां के नवाब, बंगाल के राजा का मंत्री, प्रधानमंत्री और अर्थमंत्री। सनातन गोस्वामी थे प्रधानमंत्री और रूप गोस्वामी थे अर्थमंत्री। दो सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट उनको था। प्रधानमंत्री का तो स्थान सबसे ऊंचा है ही है, और उसके बाद किसके स्थान आता है? जो सारे पैसा वगैरह संभालते हैं। तो ये दोनों पोजीशन में दो भाई का ये हुआ था। उस समय हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ कुछ नहीं करते थे, बल्कि नवाब हुसैन शाह जब सुना रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के बारे में, दो ब्राह्मण थे, कर्नाटक के ब्राह्मण, कर्नाटक से दक्षिण भारत से उन्होंने बंगाल में आए थे, वहां रहते थे। तो वहां के ब्राह्मण बहुत ही ऊंचे कोटि के ब्राह्मण, और उस समय ब्राह्मण क्या कोई भी अगर मुसलमानों के साथ उसका कुछ संपर्क रहता था तो हिंदू समाज उसको बहिष्कार कर देते थे, निकल देते थे कि तुम हिंदू नहीं। इस कारण बहुत सारे आदमी मुसलमान बन गया था, क्योंकि हिंदू समाज में उनको स्थान नहीं रह गया। और तुम मुसलमानों के साथ बात किया, चलो तुम हिंदू नहीं हो। और अगर मुसलमानों ने उसको पानी पिला दिया तब तो सत्यनाश हो गया। ये हिंदू समाज इतना बर्बाद हो गया था उस समय, उदारता बिल्कुल नष्ट हो गया था समाज का। इसका कारण भी है, राक्षसों ने ब्राह्मण के रूप में आकर हिंदू समाज को ध्वंस कर दिया। राक्षसा कलिमाश्रित जायन्ते ब्रह्मजोनिषु, कलिजुग को आश्रय करके राक्षसों ने ब्राह्मण योनि में जन्म देकर ये जो वैदिक सनातन धर्म जो इतना उदार धर्म है, जो धर्म भगवान के इतने नजदीक इंसान को लाते हैं, उसको खत्म कर दिया था। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ब्राह्मण होते हुए भी राजा का मंत्रित्व ग्रहण किया, क्योंकि अगर नहीं करता तो हाल बहुत ही खराब होता था। हुसैन शाह कितना कितना निर्दय था, उसका बहुत सारे दृष्टांत है। एक दृष्टांत है, हुसैन शाह ने एक विजय स्तंभ बनाया था, मतलब कई जगह जाकर उस राज्य को अधिकार करने के पश्चात अपना राजधानी में आकर वो एक स्तंभ बनाया, जैसे कुतुब मीनार है दिल्ली में, कुतुबुद्दीन ऐबक ने वो बनाया अपना विजय के स्मृति शोध के रूप में। तो वैसे हुसैन शाह भी एक विजय स्तंभ बनाया, और उसका जो आर्किटेक्ट था वो स्तंभ तैयार होने के पश्चात उसको इंस्पेक्शन करने को गया, तो उस स्तंभ का निर्माण में उसको कुछ त्रुटि उसको पता चला। तो ये त्रुटि जब देखा तो उसको वो जो आर्किटेक्ट जो था उसको पकड़ा और ऊपर से फेंक दिया नीचे। तो इतना ही निर्दय, इतना ही निष्ठुर था ये हुसैन शाह। तो इसलिए जब हुसैन शाह ने अपना ये भेजा कि मैं आपको मेरा मंत्री बनाना चाहता हूं, आप ये मेरा निमंत्रण सादर ग्रहण कीजिए, तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी सोचा कि ये सादर निमंत्रण अगर ग्रहण नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अपना परिवार संभालने के लिए, सबको संभालने के लिए उन्होंने ये किया, राजा का मंत्रित्व ग्रहण किया। तो तब जब ये ग्रहण किया तो हिंदू समाज, ब्राह्मण समाज, उनको समाज से निकाल दिया गया। उनका नाम भी मुसलमान नाम बन गया था, वो नाम ऐसे उपाधि जैसा था, साकर मल्लिक और दाबीर खाश। सनातन गोस्वामी का नाम बना साकर मल्लिक और रूप गोस्वामी का नाम बना दाबीर खाश। तो इन ऐसे उनको उन्होंने राजा का मंत्रित्व ग्रहण किया, बल्कि मन में खेद रह गया कि मैं ब्राह्मण था तो वैसे मुसलमानों का ये कर रहा हूं। तो उन्होंने तब चैतन्य महाप्रभु को लिखे थे कि हमारा स्थिति तो ऐसी है, हम अब क्या करेंगे। महाप्रभु की कृपा के बारे में और सुना था उनको, उन्होंने उनको ये भी पता चला कि स्वयं भगवान अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से वृंदावन जा रहे थे तो जाते समय बीच में, रास्ते के बीच में, वैसे वृंदावन जाने के लिए उत्तर भारत, उत्तर बंगाल होके जाने का कोई जरूरत नहीं था, उड़ीसा से सीधा बिहार होकर जा सकते थे, बल्कि महाप्रभु ऐसे जाने का तय किया बंगाल होकर, उत्तर बंग होकर, मालदाह राम के लिए, जहां रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रहते थे, गांव के नाम है राम के लिए, और मालदाह था राजा का राजधानी, वहां से करीब कोई 8-10 किलोमीटर का दूरी है रामकेली गांव। तो महाप्रभु ने आया, इतने सारे लोगों ने उनके साथ आया, तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का कुछ ये डर गए, उन्हें कुछ भय हुआ कि ये मुसलमान रागमान अभाव अगर देखेंगे कि इतने सारे आदमी इसके पीछे चल रहा है तो शायद उसको हानि, उसको कुछ नुकसान करने का कोशिश करेंगे। तो शायद हुसैन शाह का रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का प्रभाव से कुछ धार्मिक मनोभाव हो चुका था। आके जब पूछा सनातन गोस्वामी को हुसैन शाह ने कि इतने सारे, मैं सुना एक महात्मा आए हैं, उनके साथ बहुत लोग आ रहे हैं, तो आप सुने हैं क्या कुछ? सनातन गोस्वामी बताया, हाँ सुना, 2-4 आदमी चल रहे हैं उनके पीछे कि बताया नहीं, हजारों आदमी उनके साथ जा रहे हैं। तो हुसैन शाह ने बताया, नहीं मुझे पता है बहुत सारे आदमी उनके, हजारों आदमी उनके पीछे चल रहे हैं। और महाप्रभु उनको दर्शन करने के लिए आए थे, दर्शन देने के लिए आए थे, बल्कि दिन के वक्त महाप्रभु को दर्शन करने के लिए नहीं गया, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाए तो अगर शायद कुछ नुकसान हो सकता है। रात को जब अंधेरा छा गई तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी अपना भेष बदल कर एक साधारण व्यक्ति के रूप में गए। मंत्री के रूप में तो वेशभूषा पहन कर रहते थे, बल्कि अब ये साधारण रूप में दर्शन करने के लिए गए और जीव गोस्वामी को भी साथ ले गए। जीव गोस्वामी उस समय एक बच्चा था। जीव गोस्वामी था रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के छोटे भाई अनुपम के लड़का। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का कोई बच्चा नहीं था, पुत्र नहीं था। और जीव गोस्वामी के जब लाकर महाप्रभु के चरण कमले के पास रखा तो महाप्रभु ने उसके सर पर अपना पैर रखा। इसका वर्णन ऐसा हुआ कि महाप्रभु ने भविष्यत आचार्य के रूप में उनको अभिषिक्त किया ऐसे। तो जब दर्शन हुआ तब महाप्रभु ने उनको बताया कि मिलने का प्रयास करना, मैं तो वृंदावन जा रहा हूं। तो 1-2 दिन के बाद जब महाप्रभु वहां से चले गए, वहां से महाप्रभु चले थे उत्तर बिहार की ओर, बंगाल और बिहार के बीच में बॉर्डर में एक गांव है, एक जगह है गंगा के किनारे में, कानाई नाटशाला। तो ये गंगा के किनारे होकर महाप्रभु चल रहे थे, बल्कि कानाई नाटशाला तक जाकर महाप्रभु ने सोचा इतने आदमी के साथ वृंदावन जाना ठीक नहीं रहेगा, वृंदावन इतने आदमी के साथ लेकर नहीं जाना चाहिए, वृंदावन में अच्छा अकेला जाना ही सही रहेगा। तो ये सोचकर महाप्रभु कानाई नाटशाला से फिर जगन्नाथपुरी वापस चले गए। और उसके बाद महाप्रभु जब वृंदावन जाने का प्रयत्न किया, वृंदावन जाने का संकल्प किया, तब अकेला जाने का संकल्प किया, कोई साथ में नहीं रहेगा, और झाड़ीखंड के वन के माध्यम चलने का उन्होंने संकल्प किया था। तो तब बलभद्र भट्टाचार्य ने को साथ दिया गया, क्योंकि अकेला जाना तो मुश्किल रहेगा, क्योंकि यद्यपि महाप्रभु सन्यासी हैं और सन्यासी को अकेला रहना ही चाहिए, ऐसा विचार है शास्त्र का, बल्कि सब समझाया, आपके साथ कम से कम एक आदमी को तो लेके जाइए। पहले तो काला कृष्ण दास को दिया गया था दक्षिण भारत जाने के लिए, तो काला कृष्ण दास तो माया के चक्कर में फंस गया था, आके महाप्रभु बोला कैसा आदमी भेजा मेरे साथ जो हमको छोड़कर भट्टाचार्य के वहां चला गया। बल्कि बलभद्र भट्टाचार्य बहुत ही गंभीर ब्राह्मण थे, तो बलभद्र भट्टाचार्य के साथ उनके महाप्रभु के साथ दिया गया। और आपको तो पता है झाड़ीखंड के वन के माध्यम जब महाप्रभु ने जा रहे थे तो जंगल के पशुओं ने भी महाप्रभु जब कीर्तन करने लगे तो पशुओं ने भी उनके साथ कीर्तन करते हुए नाचने लगा। बलभद्र भट्टाचार्य जो खुद देखा ये और आकर बताया। झाड़ीखंड तो ये मध्य प्रदेश का ही जगह है, बल्कि आजकल तो झाड़ीखंड अलग हो गया, झारखंड हो गया, झारखंड अलग राष्ट्र अलग प्रदेश बन गया है। तो महाप्रभु ऐसे ओडिशा से झारखंड होकर वृंदावन जाने का ये किया। और जब महाप्रभु ने वृंदावन गए तब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी रामकेली से महाप्रभु के प्रस्थान के पश्चात रूप गोस्वामी ने सोचा चलो मैं अपना राज कार्यों को अब त्यागने के समय आ गया है। तो रूप गोस्वामी ने ही पहले घर से निकल गया और उनके पास इतना दौलत था कि दो नाव में वो सोना भर कर ले गया था। दो नाव में एक दो बोड़ा नहीं, दो नाव में भरकर सोना ले गया था, सोना का मोहर। और रूप गोस्वामी ने इसका एक आदर्श रूप में अपना संपदा को बांटा था, आधा ब्राह्मण और वैष्णवों के भगवान की सेवा के लिए और एक चौथा अंश अपने परिवारों के लिए और एक चौथा अंश कभी अगर भविष्यत में जरूरत हो तो इस जरूरत को संभालने के लिए उन्होंने रखे थे। ये सोचकर रूप गोस्वामी राजकार्यों त्याग कर मंत्रित्व का पद त्याग कर वृंदावन के ओर चले गए थे। और उसके पश्चात सनातन गोस्वामी का भी वैसे राजकार्य में मन नहीं था, तो सनातन गोस्वामी राजसभा में जाना बंद कर दिया। तो राजा ने खबर भेजा क्या हुआ सनातन गोस्वामी का, वो बताया मेरा तबीयत ठीक नहीं है। बल्कि सनातन गोस्वामी के प्रति भूषण शाह का प्यार इतना गहरा था कि जब सुना कि उसको तबीयत ठीक नहीं है तो खुद वैद्य को लेकर उनको देखने के लिए आया। न पहले तो वैद्य को भेजा, वैद बोला ओके ऐसे तो कुछ बीमारी नहीं है, बल्कि सनातन गोस्वामी झूठ नहीं बोला, असल में उनका कहना ये था कि मेरा शरीर तो ठीक है बल्कि मन और आत्मा बहुत एक कठिन बीमारी से कष्ट प्राप्त हो रहा है। तब हुसैन शाह खुद देखने को गया सनातन गोस्वामी को, तो सनातन गोस्वामी को जब वहां गया तो देखा बहुत सारे ब्राह्मणों के साथ बैठकर भागवत का चर्चा कर रहे हैं। तो बताया क्या हुआ, तुम ऐसे राजकार्यों को त्याग दिया और घर में बता रहे हो कि तबीयत ठीक नहीं है, बल्कि लगता तो है एकदम बहुत ही मस्ती में हो और ये ब्राह्मणों के साथ बैठकर तुम शास्त्र का आलोचना चर्चा कर रहे हो, शास्त्र चर्चा कर रहे हो। तो राजा ने, तब सनातन गोस्वामी राजा को बोला, वैसे तो तबीयत तो ठीक है, बल्कि मेरा राजकार्य में और कोई इच्छा नहीं है, आप कृपा करके हमें ये काम से इस्तीफा दे दीजिए, छुटकारा दे दीजिए। हुसैन शाह ने बोला, ये कैसे संभव, तुम्हारा छोटा भाई तो डाकू है और कार्य तो तुम ही संभाल रहे हो, नहीं तो तुम्हारा छोटा भाई जो है वो ये सारे कुछ संभालने का लायक नहीं है, वो तो जाता है दूसरे राज्यों को लूटता है, मनुष्यों को मारता है, तो तुम ही तो सब कुछ संभाल रहे हो, तो तुम अगर नहीं रहोगे, तुम अगर चले जाओगे तो हाल कैसा होगा, कैसे रहेगा। तब फिर सनातन गोस्वामी बोला, नहीं देखिए मेरा और एकदम इच्छा नहीं है। तो राजा ने बोला, ठीक है मैं उड़ीसा जा रहा हूं लड़ाई करने के लिए, तुम भी मेरे साथ चलो। सनातन गोस्वामी बोला, माफ करना मैं तो जा नहीं सकूंगा, आप भगवान को कष्ट देने के लिए जा रहे हैं, भगवान के भक्तों को कष्ट देने के लिए जा रहे हैं, उसमें तो मैं नहीं जाऊंगा। तो ऐसे जब सनातन गोस्वामी सब राजा का सारे निर्देश को जब अस्वीकार किया, इनकार किया, तब राजा ने गुस्सा होकर बोला, ठीक है इसको कैद कर दो, जब तक मैं नहीं आता हूं इसको कारागार में रहने दो और मैं आकर उसको सजा दूंगा। तो उस सनातन गोस्वामी को कैद किया गया, था राजा का मंत्री, बल्कि उसको भी कैदी बना दिया। तो इस अवसर में सनातन गोस्वामी जो कारागार का जो अध्यक्ष था, उसको वो तो जान पहचान था ही, तो उसको समझाया, देखो मैं तो धर्म के लिए ऐसा कर रहा हूं, तो तुम अगर हमको सहयोग दोगे तो तुम्हारा भी बहुत धर्म होगा, क्योंकि धर्म कार्य में जब सहयोग देता है, जो देता है उसका स्वीकृति मिलता है, और इसके अधिक मैं तुमको इतने सारे पैसा दूंगा, इतने मतलब पैसा नहीं, इतने सारे स्वर्ण मोहर दूंगा तुमको। वो बोला, देखो मोहर तो देंगे, बल्कि जब राजा का जब पता चलेगा कि आपको कैद खाना से निकलने में आपको सहयोग दिया हूं मैं, तब तो मेरा और ये पैसा भोग करने का कोई अवसर नहीं रहेगा, राजा ने हमें मार डालेगा। सनातन गोस्वामी बोले, नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम ऐसा करना कि जब आगे पूछेगा तो बोलना कि मैं ये समेत, जंजीर समेत मैं नदी के किनारे में ये करने में गया था, बाह्य क्रिया करने को गया था, तो उस समय मैं जंजीर समेत, लोह का जंजीर पैर में हाथ में बंधा हुआ ये समेत मैं पानी में गिर गया, और यद्यपि आप बहुत तलाश किया बल्कि हमको आपको पता नहीं मिला, आप शायद गंगा के लहर में पानी में डूब गए हैं। तो सोचा, ठीक है ये तो एक अच्छा ये है, धर्म भी होगा, पैसा भी मिलेगा और सजा भी नहीं मिलेगा, तो ये सोचकर वो सनातन गोस्वामी को छोड़ दिया, और सनातन गोस्वामी यद्यपि मंत्री होने के कारण बहुत सारे आदमी उनको पहचानता था, तो इसलिए सनातन गोस्वामी ने असल जो राजपथ जो है सही रास्ता से नहीं गया, वो पागदंडी से गया, गांव गांव के बीच होकर, जंगल जंगल के बीच होकर गया, ताकि कोई उनको पहचान न सके। जाते समय साथ में महाप्रभु ने, सनातन गोस्वामी ने एक नौकर को ले गया था और नौकर को बताया कि कुछ साथ में कुछ पैसा वगैरह कुछ नहीं लेना, क्योंकि वो डाकू वगैरह अगर ये करेगा, पैसा रहने से मुश्किल हो सकता है। बल्कि सनातन गोस्वामी का जो नौकर सनातन गोस्वामी को कहने पर भी वो 6 स्वर्ण मोहर साथ में ले लिया और चलते चलते एक पहाड़ के नीचे एक छोटे से गांव में आया, तो वहां पर एक सरायखाना जो होता है रहने का, जो छोटा सा होटल, मैं सोचो जो ये होटल में रात को ठहरा, तो होटल का मालिक जो है बहुत आदर किया, आइए साहब, आइए जनाब, आप रहिए मेरा यहाँ। तो तब सनातन गोस्वामी ने सोचा, मंत्री था, बहुत बुद्धिमान था और राजनीति भी मालूम था और शायद मनस्तत्वविद भी थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं तो एकदम भिखारी जैसा हूं और ये तो है होटल वाला, तो हमको क्यों इतना आदर कर रहा है। तो सनातन गोस्वामी ने उसको पूछा, नौकर को पूछा, क्या तुम्हारे साथ कुछ पैसा वगैरह लेके आए हो? वो बोला, हाँ, केवल 5 मोहर लेके आया हूं। सनातन गोस्वामी बोल दो। तो 5 मोहर लेके होटल वाला को दे दिया, बोला, देखिए आप तो बहुत ही सज्जन आदमी हैं, तो आपका उदारता से मैं एकदम चमत्कृत हो गया, तो आप ये मेरे पास ये 5 मोहर हैं, तो आप ये रख लीजिए। तब होटल वाला बोला, अच्छा हुआ कि आप दे दिया, ये भगवान का ही कृपा है, मुझे पता था कि आपका पास 6 मोहर है, तो इसलिए मैं ऐसे आपको बुलाया ताकि आज रात को आपको हत्या करके हम ये आपका मोहर ले लेता था, तो मैं देखता हूं कि आप बहुत सज्जन हैं, आप रखिए ये मोहर आपके पास, हमको जरूरत नहीं। सनातन गोस्वामी, देखिए ये तो काल सांप है, ये साथ में रहेगा तो मृत्यु ही अनिवार्य रहेगा, तो आप ही रख लीजिए और कृपा करके हमको ये जो पर्वत है वो पर्वत उतारने का ये कर दीजिए, प्रबंध कर दीजिए। और नौकर को बुलाया, बोला, और जो एक मोहर है कहाँ है? तू भाग यहां से, अपना मोहर लेके घर वापस चला जा। ऐसे उन नौकर को वापस कर दिया और वो जो होटल वाला जो था वो महाप्रभु को पर्वत, अपना आदमी देकर पर्वत के उस पार ले गया। सनातन गोस्वामी ने तब गाजीपुर में आया, उत्तर प्रदेश का गाजीपुर। तो गाजीपुर में सनातन गोस्वामी का ब्रदर इन लॉ साला राजा के लिए घर घोड़ा खरीद रहा था, तो देखा सनातन गोस्वामी को, देख के उस पर, बल्कि देखने में लगा, पहचाना नहीं ऐसे, बल्कि पहचान लिया, दाढ़ी हो गया था लंबा, बहुत दिन से ऐसे पथ चल रहे हैं तो, और उस समय ठंडा होने वाला था सर, बहुत ही शीत की मौसम आने वाली थी तो बहुत ठंडा होगा, तो उनका जो रिश्तेदार उनको बुला के और एक शाल दिया, एक शॉल दिया, चादर लोग पश्मीना बहुत कीमती चादर, और एक रात वहां रह के सनातन गोस्वामी ज्यादा समय नहीं ठहरना चाहा क्योंकि अगर कोई पहचान लिया तो मुश्किल होगा। तब सनातन गोस्वामी ने वाराणसी में आया, जब तब उनको खबर मिला कि चैतन्य महाप्रभु वहां है, तो सनातन गोस्वामी तपन मिश्र के घर में चैतन्य महाप्रभु ठहरे थे, उनका घर गया और बाहर ठहरे हैं, किसी को खबर भेजा, प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब महाप्रभु निकलेंगे तब तो उनका दर्शन होगा, अंदर नहीं गया, बाहर ही बैठे रहे। तो तपन चैतन्य महाप्रभु ने तपन मिश्र को बोला, जाओ देखो बाहर कोई वैष्णव है या नहीं। तो उन्होंने आकर देखा, देखकर गया अंदर, जाकर बोला नहीं कोई वैष्णव को तो नहीं देखा वहां। तो महाप्रभु ने बोला कोई था क्या? तो बोला हाँ, एक मुसलमान फकीर को देखा था क्योंकि सनातन गोस्वामी का हाल उस समय ऐसे ही तो थे राजकाज में, और शायद दाढ़ी वगैरह बहुत लंबा हो गया था, कपड़ा जो पहने हुए थे वो भी वैष्णव की तरह नहीं था। तो महाप्रभु बोला तो ठीक है उसको ही बुलाओ। तो तपन मिश्र ने जाके उनको बुला के लाया अंदर, और आते ही चैतन्य महाप्रभु उनको गले लगा लिया। सनातन गोस्वामी बोला मैं इतना गंदा हूं एकदम, आप मुझे स्पर्श ना कीजिए। तब चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि तुम्हारे भक्ति के द्वारा तुम सारे जगत को उद्धार कर सकते हो, तुमको मैं स्पर्श कर रहा हूं अपने आप को पवित्र बनाने, पवित्र करने के लिए। तब उसके पश्चात महाप्रभु ने बोला जो उनको, जाओ तुम गंगा में जाके भद्र बन के आओ। भद्र बन के आओ का मतलब सामाजिक रूप में आओ, मतलब बाल और दाढ़ी मूछ कमा के नहा के तुम आओ। सनातन गोस्वामी गया और मुंडन करके, मस्तक मुंडन करके नाव नदी में गंगा में नहा के जब ऊपर आया, तब देखा कि तपन मिश्र ने उनके लिए एक नया कपड़ा लाए हैं। चैतन्य महाप्रभु बोला नहीं, एक पुराना कपड़ा लाओ, एक पुराना धोती लाओ। तो पुराना धोती लाया, वो पुराना धोती को फाड़कर आधा धोती से उन्होंने बहिर्वास बनाया नीचे की तरफ पहनने के लिए, और ये चादर और आधा भाग लेकर चादर बनाया। और ठंडा था उस समय बहुत, तो जो शाल जो मिला था उसको पहनकर गया। तो चैतन्य महाप्रभु उनके प्रति केवल दृष्टिपात किया, देखा बस। सनातन गोस्वामी का पता चला महाप्रभु का मन में क्या भावना था, तो झट से गंगा के किनारे में गए। तो देखा एक बंगाली वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव नदी में नहा रहे हैं। तो महाप्रभु ने उनके जाकर पूछा कि आप कृपा करके ये मेरा ये चादर लेके आपका जो कंथा है मतलब पुराना कपड़ जोड़ के जो रजाई जैसा बनाया जाता है तो उसको आप दीजिएगा। तो वो लोग सोचा मजाक कर रहा था क्योंकि इतना मूल्यवान शॉल और अपना टूटा हुआ कंथा, तो बोला देखने से तो लगता है कि भव्य आदमी हो, बल्कि ऐसे मजाक करने से क्या हो? क्यों आप ऐसे मजाक कर रहे हैं हमारे साथ? सनातन गोस्वामी बोले नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं, आप कृपा कर दीजिए। तो कंथा लेकर महाप्रभु के पास जब गया तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। महाप्रभु ने बोला कृष्णा एक बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर है, तो डॉक्टर जब रोग सराते हैं तो उसका कोई लेश भी नहीं रखते हैं, एकदम पूरा से पूरा तरह रोग का विनाश करते हैं। तो कृष्ण क्यों जब भवरोग से तुमको उद्धार कर रहा है क्यों छोटा सा ऐसा एक ये रखेंगे? तो वैसे महाप्रभु के साथ सनातन गोस्वामी का मुलाकात हुआ और वहां वाराणसी में एक घाट है दशाश्वमेध घाट, वहां बैठकर 10 दिन तक सनातन गोस्वामी को शिक्षा दिए थे चैतन्य महाप्रभु। तो वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को आत्मसात किए थे। रूप गोस्वामी के साथ भी चैतन्य महाप्रभु का मुलाकात हुआ था इलाहाबाद में प्रयाग, जहां गंगा जमुना और सरस्वती का संगम है, वहां भी चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा दिए थे। वैसे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी गौड़ीय वैष्णव के संप्रदाय के महान आचार्य बने थे। आज मैं आई जस्ट स्टॉप नाउ। डज एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न है किसी को? यस
yes?
तो किससे संबंधित है? भगवान से तो कम से कम संबंधित है। हाँ, शिष्य में कौन से गुण देखना चाहते हो जिससे मैं प्रसन्न हूं? देखो, गुरु केवल शिष्य से एक ही चीज आशा करते हैं, ताकि भक्ति रूप संपदा वो प्राप्त हो जाए। ये जो संपदा है ये सबसे सर्वश्रेष्ठ संपदा है, मतलब ये उन्होंने चाहते हैं कि शिष्य बहुत अच्छा भक्त बने, यही केवल उनका चाहना है।
हमें गुरु महाराज जी के चरण कमलों में दिन में 3 बार प्रार्थना करनी चाहिए, कृपा याचना करनी चाहिए। तो जैसे गुरु महाराज जी मेरे अंदर तो बहुत कमी है, मुझे समझ में आता है कि भगवान से आपसे क्या प्रार्थना करनी चाहिए, तो आदेश में जीवन के लिए आत्म कंडीशन क्या प्रार्थना करनी चाहिए?
ताकि भगवान तुमको बहुत सारे भक्ति प्रदान करे। हरे कृष्ण। और एक प्रश्न है,
जैसे मैं प्रभु जी के साथ बैंक में गई थी तो छोटी सी किताब लेकर गई थी रस्ता, तो मैंने पढ़ा, फिर वहाँ की जो मैडम है उससे मेरा अच्छा परिचय हो गया, फिर उनको मैंने गिफ्ट के तौर पर दे दी थी। पहले आप इसको पढ़िए और आपका रुचि होगा तो मैं कल फिर से आऊंगी बैंक में काम था तो मैं भगवत गीता दूंगी। तो उन्होंने कहा हाँ। तो जब हम दूसरों को बताते तो हमारे उस टाइम में मनोभाव क्या होना चाहिए
कि वो सब भक्त बन जाए, भगवान का कृपा प्राप्त हो जाए। देखो सब भगवान का ही पुत्र हैं, औलाद हैं, भगवान का ही दास हैं। तो भगवान को भूलकर इस भौतिक जगत में कितना कष्ट प्राप्त हो रहे हैं सब लोग। तो ये देखकर जो भक्त हैं उनका मन में खेद होता है, कष्ट होता है कि आप सब भगवान के संतान हैं और आपको क्यों ऐसा हाल हुआ है। तो आइए भगवान के साथ आपका संपर्क जोड़ लीजिए और भौतिक जगत के इतने जितने सारे कठिनाई हैं ये कठिनाई से मुक्त होकर आप भगवान के पास चले जाइए। ये केवल भक्त ने आशा करते हैं। यस
दो प्रश्न है। एक है कि सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को इस प्रकार से जब राजा ने निमंत्रण दिया था तो वे स्वीकार कर लिया और फिर उनके मंत्री बन गए थे। पर हम सुनते हैं कि जब भारत में मुसलमान पहली बार आए थे गजरी वगैरह भोरी तो उस समय पर ब्राह्मण जो वहां थे वहां के कन्हार वगैरह के वो किसी भी तरह से उनको नतमस्तक नहीं हुए और उनको उनके खिलाफ गए थे और उनको मार दिया गया था। मतलब चाणक्य बताते हैं कि उनको तारीफ करते हैं कि यद्यपि वो अपना जान को दे दिए पर फिर भी मुसलमानों के सामने मतलब कभी ये सिर नहीं झुका है। तो
ये एक विचार ये है कि संकट के समय में भी सर नहीं झुकाएंगे और इससे भी बढ़कर ये है कि किसी तरह जिंदा रहकर भगवान को सेवा करते रहेंगे। इन दोनों विचार में से श्रेष्ठ कौन है? भक्त जो है वो सोचते हैं भगवान की सेवा के लिए, भगवान का सेवा ही मुख्य उद्देश्य है। और ये भी भगवान का लीला का एक अंश है। अगर शरण नहीं झुकाते थे तो महाप्रभु के साथ मुलाकात भी नहीं होता था, महाप्रभु के इस लीला में अंश भी ग्रहण नहीं कर सकते थे। तो भक्त जो है भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। अपने विचार के ऊपर आधार पर नहीं। इसे द चंद्रगुप्त नामिन चाणक्य ने इसको तारीफ किया, बल्कि चाणक्य कब आया था?
नहीं, ये तो बहुत पहले की बात।
हाँ, कब? घोड़ी नहीं, चाणक्य। ओ अच्छा, ओ अच्छा, अलेक्जेंडर ब्राह्मणों को कुछ नहीं किया?
नहीं, मार दिया था वहां का, बहुतों को मार दिया था। ये एक्चुअली मैंने पढ़ा।
ओ अच्छा, ओके।
तो सुगर जी कह रहे थे कि रोज कल शायद कह रहे थे कि गीता पढ़ना चाहिए प्रभुपाद जी। तो एक्चुअली मैं ये सोच रहा था काफी दिन से कि जो सुबह आपने पहले यहाँ चालू किया था कि गीता रोज
अच्छा,
हाँ। तो शाम में कन्वर्ट कर दिया गया था लेकिन शाम को नहीं हो पा रहा था।
वो गीता पाठ बंद हो गया क्यों?
शाम को ही नहीं रहते
थे। वो शाम को गीता पाठ में कोई नहीं रहता, तब तो और भी खराब हो गया। सुबह की रखो गीता पाठ और शाम को गीता पाठ का बंदोबस्त करो। कीर्तन अंत कम से कम कीर्तन चलता है। तो जब जैसे हम जब कम से कम 15-20 मिनट के लिए भी गीता पाठ हो, जैसे जब मंदिर बंद हो जाता है श्रृंगार के लिए तब कुछ समय के लिए गीता पाठ हो सकता है। मेक इट अ पॉइंट।
तो सुबह जो श्लोक सब लोग सीख रहे थे उससे बहुत अच्छा होता था कि
हाँ,
गीता गीता का एक अध्याय पढ़ते थे सुबह तो आप जैसे
मे बी वी शुड टेक अ टेस्ट हु हैज मेमोराइज भगवद गीता विच चैप्टर एंड देन पुरस्कार मिलेगा
अगर उसको फिर से चालू अगर
कल से चालू कर दो मॉर्निंग আমি ভাবছি একটা অধ্যায় প্রতিদিন এক একটা করবে নাকি এক অধ্যায় এক হপ্তাহ পাঠ করেঙ্গে হ্যাঁ পহলে তো এক হপ্তাহ এক অধ্যায় হো রাত তো বৈসে হি আচ্ছা রহেগা তো কণ্ঠস্থ করনে মে আসান রহেগা তো ওর ভি আচ্ছা হ্যাঁ আর 23 তারিখ কো পুরা গীতা पाठ करने का ये करो ओके
सुबह गीता पाठ और शाम को दोनों दोबारा
चलेगा सुबह गीता का आवृत्ति होगा
और
शाम को गीता पाठ रहेगा एक श्लोक जैसे होता है श्लोक तात्पर्य गीता देखो गीता इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इफ वी अंडरस्टूड गीता देन एवरीथिंग विल बी Because that's the foundation. So we should create that foundation over the over Bhagavad Gita. So Gopati Krishna Das from Malaysia, Hare Krishna Maharaj, Pamho AGTSP Maharaj. My questions today: one, Maharaj, recently the NASA Aerospace Research Center announced that there will be no sunshine. What is your opinion about this? If it is so, what we should do for the 3 days? Okay. I don't know what they have decided. But let them speculate. But we will simply pray to Surya Dev. We are very happy to see you every morning. I am happy to greet you every morning. Surya Dev ka kripa se hi Surya Dev ka udai hota hai. I don't know what is the NASA Research Center, Aerospace Research Center announced. But there won't be. When will that be? For 3 days there won't be any sunshine. Okay. Maharaj, what is the actual meaning? Question 2. What is the actual meaning of this verse? Matalo harijano bishayo range pujalo ragopatho gaurabo bhange. Because I see many devotees give different meanings. Pujalo ragopatho. This song Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur sang when he was taking the deities to the new temple that was built by a very rich disciple of his in Bag Bazar, which is the present Gauriamath temple, from Ultadanga main road. The small temple where Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur started his preaching, where Srila Prabhupada met him. It was a small house. There he started, and from there now they're going to a big temple. So at that time he was singing this song. The meaning of this song is Pujalo Ragopatho. Ragopatho means Ragmarg, the bhakti in Ragmarg. Gaurabha Bhange, the mood of awe and reverence is now subdued. Subduing it or overstepping the worship of the Lord in this way, the Rag Marga is being established. It is that although apparently it is a Gaurava, awe and reverence, worshipping the Lord, But that is actually in the mood of Ragapat, meaning based on Prema Bhakti of Krishna. Following Sri Chaitanya Mahaprabhu is the actual Ragapat or Raganuga Bhakti. And Matalo Harijano Bishayarangi. Matalo means become absorbed or become completely engrossed. Harijana, the Vaishnavas. Vaishnavas who are apparently Nishkinchana, they voluntarily accept life of renunciation, life of detachment. Now as if they have become involved in mundane activities, Bishayarangi. Matalo Harijana Bishayarangi. Like apparently, it may seem that the sadhus, the Vaishnavas are becoming absorbed in apparently mundane activities full of opulence and grandeur. But actually this is the way of Raganuga Bhakti. Ragopatha means Rag Marg. There is Bidhi Marg and Rag Marg. So Mahaprabhu's followers are naturally in the Rag Marg but based on the Bidhi Bhakti. And the Bidhi Bhakti is following the scriptural injunctions. And what is that scriptural injunction? The way the Supreme Personality of Godhead is worshipped in this age of Kali in the form of Sankirtan. Jaggai Sankirtana Praya. So Sankirtan, when Sri Chaitanya Mahaprabhu is worshipped through Sankirtan Yajna, that is the Vidhi Marg. But following Chaitanya Mahaprabhu is one is spontaneously following the Rag Marg, because Raganuga Bhakti means following a Ragatmika Bhakta of Vrindavan. So when we are following Sri Chaitanya Mahaprabhu, who are we following? We are following Srimati Radharani, the best of the Ragatmika Bhaktas. Question number three, Maharaj, can you explain to us about the Ritvik concoction and how it is false? Because you were with Srila Prabhupada during his final Leela. And Maharaj, can you share to us about your experience with Srila Prabhupada during his final Leela? Actually, today, we won't be able to go into such deep topic. But main point is that the Ritviks are saying that Prabhupada will continue to give initiation through the Ritvik Acharyas. Ritvik means representative Acharyas. Representatives. But Prabhupada will give initiation. But that is not a bona fide concept, because such a system hasn't been prescribed in the scriptures. Such a system has never been practiced before. And such a system hasn't been prescribed by Srila Prabhupada. So when something is not authenticated by Sadhu, Shastra and Guru, that cannot be accepted. That's why we have this reservation about the Ritvik concept. Unfortunately, some people think that in ISKCON, no one is qualified to be a guru. Therefore, Srila Prabhupada will continue to give initiation. But there is no such instance of posthumous initiation. Like after one leaves the planet, the guru continues to give initiation. An acharya, a guru, can give shiksha. Like still now Prabhupada's Shiksha is available. Rupa Goswami's Shiksha is available. Sanatan Goswami's Shiksha is available. So that way they are our Shiksha Gurus, no doubt about that. But we cannot say, well, I'll take Diksha from Rupa Goswami. And that will be the problem. Like if we say that one can give initiation after his disappearance, then people will say, well, why Prabhupada? Why not Rupa Goswami? Why Rupa Goswami? Why not Chaitanya Mahaprabhu himself? Hare Krishna. This is from Harsha from Boston. Hare Krishna, Harsha. Hare Krishna Maharaj, wish you a glorious day. My question is, most of the times it is the fear of staying in Maya is like guiding towards Krishna. But not the attraction towards Krishna, how to come beyond this phase, help. Most of the time, it is the fear of staying in Maya is like actually, that is G-I-D-I-N-G. It can be guiding, G-U-I-D-I-N-G, or gliding, G-L-I-D-I-N-G. So it's a very, I can't make out. Anyway, so the point is that oftentimes we are just attracted by Maya and we are not becoming attracted towards Krishna. So how can we develop our attraction for Krishna? The attraction develops according to the quality of that person. Now, when we become aware of Krishna's wonderful qualities, Krishna's beauty, Krishna's opulence, Krishna's strength, Krishna's fame, Krishna's knowledge, Krishna's renunciation, then automatically we will become attracted to Krishna. And this attraction will grow from hearing about Krishna's wonderful qualities. Krishna is all attractive. Now it's up to us to become aware of Krishna's attractive qualities. So the best way to develop this attraction is by hearing about Krishna. And hearing and reading is again, reading is also a kind of hearing. So read the books of Srila Prabhupada, read the books that are describing about Krishna's glories. And that way you will develop your attraction. And when you develop your attraction for Krishna, then automatically you'll become disgusted about Maya. When you have a nice plate of Mahaprasad, do you want to look at the rotten plate of stinking food? No. So that is what Krishna consciousness is like. Once you get the taste, you automatically give up the taste for Maya. Another question, comment actually, by Gopati Krishna Das from Malaysia. Thank you very much, Maharaj. We hope to see you in Malaysia soon.